ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆனந்த சுசுப்தி அவஸ்தா மே சுக கா கேவல அனுபவ கர்த்தா ஹை, கேவல ஜெய்சே சுசுப்தி கால மே கேவல சுக ஹி சுக ரஹதா ஹை, ஐசே ஹி உஸ் ஸ்திதி மே கேவல ஆனந்த ஹி ஆனந்த ஹை, ரஸ் ஹி ரஸ் ஹை, மதுர்தா ஹி மதுர்தா ஹை, மிட்டாஸ் ஹி மிட்டாஸ் ஹை, ஆனந்த ஹி. பரந்து உன் சப் கே லியே, உன் சப் கே லியே பட்னா கிஸ் க்ரம சே ஹோகா? போலே ஹம் இன் தோனோ கோ कारण कार्य की दोनों की उपेक्षा करके निकल जाए? नहीं, इन ये इसकी उपेक्षा ऐसे नहीं होगी, ऐसे हम इनको नहीं वो कर पाएंगे. इसलिए कहा कि पहले व्यष्टि को पहचानो, फिर समष्टि को पहचानो, पहले कार्य रूप जगत को जानो, फिर कारण रूप ब्रह्म को पहचानो, फिर कारण और कार्य से दोनों से अलग होकर, दोनों से अलग होकर. यदि हम कारण कार्य में ही उलझे रहेंगे, केवल कार्य रूप जगत को देखकर, केवल कार्य रूप जगत को लेकर, कभी कारण रूप जगत को लेकर, कारण रूप को लेकर, कार्य कारण में ही उलझे रहेंगे, इन्हीं को देखते रहेंगे, तो उस परब्रह्म तक कहां पहुंचेंगे, उस सुख को कहां प्राप्त करेंगे? इसलिए विचारवान जो पुरुष हैं, धीर पुरुष जो हैं, वो हमें यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं, यही कहते हैं कि हमको इन दोनों को, संभूति और असंभूति के द्वारा उपनिषद हमें यही कहना चाहती है कि सबसे पहले त्याग करने की बात आती है. नारायण, त्याग करो. बोले किसकी त्याग करो? देहाशक्ति का. क्योंकि ये त्याग किए बिना बात होगी नहीं. और जहां त्याग करने की बात आती है, तो मैं यही कहूंगी कि बात तो बहुत विचारणीय है, चिंतनीय है, गंभीर है, परंतु जब व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं, तो त्याग करने की, छोड़ने की जहां बात आती है, तो छोटा छोटा त्याग हमसे नहीं होता. छोटा छोटा त्याग हम नहीं कर सकते हैं. देहाशक्ति, शरीर की आसक्ति छूटे और मन से ममता विमुच्यते, मन से ममता जाए, देह से अपने आप से आसक्ति होती है, परिवार से ममता होती है, और इस जगत के साथ राग होता है, संसार के साथ राग है, इसमें हमारा राग रहता है, मोह रहता है. तो बोले मन से, परिवार के अंदर से ममत्व छूटे और शरीर के साथ आसक्ति छूटे, और इन जहां इनको छोड़ने की जहां बात आती है, जब तक ये ही नहीं छूट सकेंगे हमसे, तो नारायण फिर हम आगे कैसे निकल सकेंगे? इसलिए सबसे पहला हम अपने शरीर से अपनी आसक्ति को कम करें. शरीर से आसक्ति कम कैसे होगी? बोले शरीर की नश्वरता, शरीर की अनित्यता, शरीर की क्षणभंगुरता के ऊपर हम विचार करें, सोचें, जिस पर हमारी इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है, ये कुछ रहने वाला नहीं है, और ये पल पर इसके परिवर्तन को देखें, इसकी ऐसी उपेक्षा करें कि इसके परिवर्तन को, इसमें आने वाले परिवर्तनों को आप देखें, उनको समझें, और उसके साथ ये विचार करें कि शरीर कितनी तेजी के साथ क्षण क्षण करता हुआ क्षीण होता जा रहा है, क्षीणता की ओर जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, और इससे जल्दी की ये नष्ट हो जाए, ये समाप्त हो जाए, हमसे इससे अपना हित साध लेना है, अपना कल्याण साध लेना है. क्योंकि यदि इससे अपना हित हम प्राप्त नहीं कर सके और शरीर ने साथ छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि नुकसान के नाम से हम बहुत डरते हैं। संसारिक व्यवहार में, व्यापार में थोड़ा रुपया पैसे का भी नुकसान लग जाए तो हमें बड़ी चिंता होती है कि इतना मेरा नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, और कितना बड़ा नुकसान हम अपना कर रहे हैं, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। सत्संग से हमें यही समझना है कि सब महती विनष्टि, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी यदि आप शरीर के रहते हुए इस शरीर से निकल न सके, शरीर के रहते हुए शरीर से अपना हित प्राप्त न कर सके। तो शरीर में रहकर आप विचार करो, विचार पूर्वक आप आसक्ति को छोड़ो, और आसक्ति छोड़ने के बाद जो परिवार में ममत्व है, मेरापन, ममत्व माने मम, मेरा मेरा, जिसे आप मेरा कहकर अपने साथ बांधना चाहते हैं, जिसे आप मेरा कह रहे हैं, आप शरीर को मेरा कहते हैं, मेरा शरीर, तो जिसको आप ये शरीर को मेरा संबोधन करते हैं, वो शरीर भी आपका साथ नहीं देता, तो इन सब का परिवार का जो संबंध है वो तो इसी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि इस शरीर से पहले मेरा इनसे कोई, क्योंकि कोई संबंध नहीं था, और ये सब जो मुझे मेरा परिवार जिसे मैं कह रहा हूँ, ये शरीर के साथ इनका रिश्ता है, और शरीर के नष्ट होने के साथ ही इनके साथ मेरा संबंध भी नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनका संबंध किसके साथ, जब जो मेरे अत्यंत निकट है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान तीन हमें साथ मिले, ये तन मिला, ये जन मिला, जो जन हमें मिला है, जब शरीर मिला तो उसके बाद ये मिले, और पहले शरीर मिला, जो पहले मिला वही नहीं रहने वाला है, तो ये जन भी कुछ रहने वाले नहीं है, और तीसरा हमको जो मिला ये धन मिला, विद्या रूपी धन है, और द्रव्य रूपी धन है, जो कुछ भी हमें धन के रूप में लक्ष्मी मिली, जो भी मिली, ये धन जिसे हम कहते हैं, ये जो धन हमको मिला ये यही मिला और यही हमसे अलग होने वाला है। इसलिए संसार के साथ, जगत के साथ राग की भावना, ये इसके साथ अपनापन, प्रेम जिसको हम कहते हैं, जब तक संसार के साथ राग नहीं छूटेगा, जगत की अनित्यता को, जिस संसार को हम कहते हैं ये मेरा है, ये संसार, ये जगत, कुछ भी, जो कुछ जगत माने जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये भी कुछ रहने वाला नहीं है, इनके लिए, इनको, इनके प्रति हमारे अंदर जो सद्भाव है, इनकी होने की जो, इनके प्रति जो सत्य की भावना है, उस भावना का त्याग करना है नारायण, उस सोच, उस दृष्टि का त्याग, और यदि वो त्याग हो जाएगा तो पास होने पर भी उस व्यक्ति को उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पास बहुत चमकीला एक नग है जिसे हीरा कहते हैं, और वो था तो कांच का टुकड़ा, तुम जाने हम कनक हो, तब हम दिनों प्राण, कनक कसोटी कस गए तो पीतल रहे निधान। तो जब उसको आपने सोना समझ करके, उस चमकीले पदार्थ को, उस नग को सोना समझ करके बहुत अपने पास संभाल के रखा हुआ था, परंतु एक बार ऐसी स्थिति आई कि आपको उस कुछ ऐसी आपत्ति आई अपने कार्य में कि आपको धन की बहुत जरूरत पड़ी, तब आपने सोचा कि चलो ये स्वर्ण रूपी धन मेरे पास है, इसे ले जाकर के मैं अपना काम साध लूं। उसके लिए आप लेकर जब दिया तो कसौटी में उसे खरा देखा तो वो तो खोटे का खोटा निकला, पीतल का पीतल निकला। तो अब आपके वो पीतल जब था तो आपको आपकी वस्तु आपके हाथ में लौटा दी गई, परंतु जब वो आपके हाथ में आई तो पहले जो आपके पास उसके के लिए महत बुद्धि थी, वो महत बुद्धि उसके प्रति आपके अंदर नहीं रही, पर पास होने पर भी, हाथ में होने पर भी आपके अंदर उसके लिए वो महत बुद्धि न समाप्त हो गई, तो होने न होने का आपके जीवन में कोई अंतर नहीं रहा। तो ठीक उसी तरह से सततत्व का विचार कर लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हम संसार से कहीं दूर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। दूर जाएंगे तो भीतर से जाएंगे, विचार से रहेंगे संसार में। ज्ञानी भी इसी जगत में रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक बात कही, हमें व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार किए बिना तो हम रह ही नहीं, उपासना तो हमें करनी पड़ेगी। उपासना माने नजदीक, अपने आप को उसके हमें जगत के पास भी रहना होगा, हमें ईश्वर के पास भी रहना, चाहे ईश्वर के पास रहे चाहे जगत के पास रहे, हमें कहीं तो पास रहना ही है। इससे हम हट तो नहीं सकते, अलग तो नहीं हो सकते, परंतु हमारी सोच हमें हमारे भीतर जगत में रहते हुए भी जगत से एक निर्लिप्तता पैदा कर देगी। जैसे पद्म पत्र विभावश, कमल का फूल जल के अंदर रहता है, जल में ही पलता है, जल से ही जीवन लेता है, कीचड़ में ही उगता है, जल के अंदर रहता है, परंतु फिर भी वो कमल का फूल और पत्ता हमेशा जल से अपने आप को निर्लिप्त रखता है, अलग रखता है, कभी वो उसके अंदर डूबता नहीं है। उसी प्रकार हम संसार में रहते हुए संसार से भरण पोषण होता है, संसार में हम चलते हैं, संसार से हमारा व्यवहार रहता है, फिर भी हम संसार में लिप्त नहीं हो पाते। यदि हमारे अंदर सद विचार स्थिर हो गया, तो सद और असत के विचार से जब सद विचार जागृत हो जाता है, सद विचार में स्थिरता बन जाती है, बुद्धि वहां स्थिर हो जाने के बाद फिर वो उसमें लिप्तता पाई नहीं जाती, माने आसक्ति पाई नहीं जाती, फिर आसक्ति नहीं होती, अर्थात उसका जीवन त्यागमय जीवन हो जाता है। संसार में रहते हुए संसार का त्याग करके संसार में जीवन निर्वाह करता है न, तक्तेन भुंजिता, अर्थात जीवन का निर्वाह, जीवन निर्वाह करता है उस संसार में। और जीवन निर्वाह कैसे करता है, बोले त्याग पूर्वक, तक्तेन भुंजिता मां कश्चित कश्चिदुनम, कि किस इस संसार, यही उपनिषद हमें समझाती है कि जीवन हमें व्यष्टि और समष्टि को समझ करके, जीवन वो है जिसमें न कोई अपेक्षा है और न कोई उपेक्षा है, जहां निराकार की नहीं, साकार की नहीं, निर्गुण की नहीं, सगुण की नहीं, जो उपेक्षा और अपेक्षाओं से घिरा हुआ जीवन होगा, जिस जीवन में कुछ अपेक्षाएं होंगी, हमें ऐसा मिले कुछ पाने की होगी और कुछ उपेक्षा करने की होगी, छोड़ने की होगी, जहां छोड़ने में और पकड़ने में हम लगे रहेंगे, जब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी, जब छोड़ेंगे तो कुछ पकड़ेंगे भी, तो इस प्रकार पकड़ने और छोड़ने में, हटाने और जब किसी को पास लाएंगे तो किसी को अपने से दूर भी करेंगे, किसी को दूर करेंगे तो किसी को पास खींचेंगे, जब ये कार्य चलता रहेगा, यही सब करते रहेंगे, ये सब व्यवहार होता रहेगा, तो ब्रह्म का विचार कब होगा नारायण, उसके लिए कब सोचोगे। इसलिए जो कुछ आप कर रहे हो तो उस कार्य तो वही होगा, कार्य तो वही होगा, परंतु उसमें वो दृष्टि नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण ऐसे समझिए इसको, कि एक बार एक सेठ अच्छा सत्संगी था, रोज सत्संग में जाता था, सुनता था, भगवत विचार करता था, संतों की सेवा करता था उसका, और बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जीवन निर्वाह के लिए व्यापार किया करता था। एक बार उसकी पत्नी अपने किसी उत्सव में गई, मंगल कार्य में गई, तो उसने देखा कि उसकी पड़ोस की बहन ने बहुत सुंदर हाथ में एक कंगन पहना हुआ है, हीरे का। उसने आकर के अपने पति से कहा कि देखो कि पड़ोसी ने कितना बढ़िया कंगन हाथ में पहन रखा है, कितना सुंदर है, और आपने मुझे कुछ ला करके नहीं दिया, आप ऐसे ही व्यापार करते हैं। उसने खरी खोटी अपने पति को सुनाई और मांग की कि मुझे ऐसा ही कंगन लाके दे, ऐसा ही कंगन लाके दे। कहती रही, सुनता रहा और वो अपने कार्य में लगा रहा। एक दिन तो इतना अति हो गया, यदि आज मेरा कंगन नहीं आया तो आपका राशन पानी सब बंद। तो महात्मा जाके सत्संग में बैठे हुए, वो गया सेठ बिचारा सत्संग में, जैसे रोज जाता था, और रोज तो प्रवचन सुनने के बाद उठ करके चला जाता था। और आज घर में तो जाने के लिए खतरा है बहुत बड़ा, और वो बैठा रहा। तो जब सब उठ गए तो महात्मा जी ने उससे पूछा, बोले सेठ जी आज आप बैठे हुए? हाँ महाराज आज बैठा हूं। बोले बहुत परेशान से भी लगते हो? बोले हाँ परेशानी तो है आज। महात्मा ने पूछ लिया कि क्या बात है, इतनी परेशानी वाली क्या बात है, क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी कोई बात है संसार में जिसका कोई समाधान न हो? आज तक कभी कोई ऐसी समस्या हुई जिसका समाधान न होता हो? अर्थात समस्या होती है तो साथ में उसका समाधान भी निकलता है। कोई न कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है जिसका कोई समाधान न निकले, कोई हल न निकले। परंतु जब समस्या आती है तो हम विचलित हो जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी आ गई, अब क्या होगा? क्या होगा? उसका भी कोई हल होगा, कोई समाधान होगा, परंतु उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। शांति स्वस्थ मन से हमें वहां पर अधीरता और अधीर होने की आवश्यकता नहीं होती ना। इसीलिए का धीरज, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर ही समचारी। धीरज आद पुरुष का धैर्य क्या है, वो विपत्ति में ही पहचानना, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर ही पहचान में आती है। तो महात्मा ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं बताओ। तो उसने सच्ची सच्ची बात महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी बहुत सोच के बोले, अच्छा तो आपके पास कुछ तो होगा? बोले हाँ हमारा थोड़ा बहुत तो है पैसा, पर ऐसा पैसा नहीं है कि जिससे मैं उसे आज के आज लाके इतना बढ़िया दे दूं। तो महात्मा ने कहा, अच्छा एक काम करो कि ऐसा ही एक कंगन पीतल का आप तैयार करके लो और उसमें सोने की पॉलिश करके और उसे ले जाकर नग लगा करके उसे पत्नी को आप दे दो। महात्मा ने युक्ति बताई और उस युक्ति से उसने कंगन लिया, वैसे का वैसे तैयार किया और ले जाकर के पत्नी को दे दिया। पत्नी ने समझ लिया कि बस मेरी मांग पूरी हो गई, जैसा मैं चाहती थी मुझे मिल गया, बहुत खुश हो गई और प्रसन्न हो गई। समय निकल गया। कुछ समय बाद उसने वो कंगन हाथ से निकाल करके कूट रखा था और कंगन उसका खो गया, गुम हो गया। और अब तो वो बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत अशांत। उसने सेठ से जाकर के कहा कि देखो मेरा कंगन खो गया है, कंगन खो गया। अब जब सेठ को ये बात कही तो अंदर से सेठ जानता है कि कंगन क्या है, और यदि वो पत्नी को कह देता है कि ये कंगन क्या है, उसकी सच्चाई बता देता है, तो वहां क्या होगा? महाभारत का युद्ध होगा। तो उसके लिए उस समय विवेक क्या कहता है? और यदि वो उसे कुछ दुख व्यक्त नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है, वो अब खो गया, ओ खो गया तो ठीक है, मुच हो जाए, तो पत्नी को क्या लगेगा कि ये मेरे दुख में सहमत नहीं है, मेरे दुख में, मेरे कष्ट में इसने अपनी कोई सहानुभूति उसके साथ नहीं मिलाई, नहीं प्रकट की, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसा कि उसके प्रति उसके मन में कोई संवेदना नहीं है, संवेदनाहीनता जाहिर होगी। इसलिए समाज में रहते हुए मनुष्य को संवेदनशील भी रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि वो उससे जड़ बन करके अलग हो जाए। तो तब युक्ति क्या कहती है? उस पुरुष ने, उस सत्संगी ने, उस सेठ ने बड़े प्रेम से उससे कहा कि नहीं, वो जब दुखी होकर पत्नी रोने लगी तो वो भी कहा, देखो बड़े मेहनत से, बड़ी मुश्किल से पसीना से बहा बहा के मैंने पैसा इकट्ठा किया और उससे मैंने ये कंगन लाया और तेरे को दिया, तुम्हें वो किया, पर तुम संभाल नहीं पाई और बहुत मुझे भी बहुत दुख है, बहुत दुख है। परंतु ये दुख तो वो प्रकट करता रहा, उसने अपनी सकल भी वैसी दुखी बना ली, उसके दुख में जैसे महान दुखी हो, उसने अपनी सब कुछ अभिव्यक्ति वही की। सब कुछ करने के बाद भी, सारा कार्य होने के बाद भी, क्या उस पुरुष का दुख उस स्त्री के दुख जैसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो अंदर से अच्छी तरह जानता है कि ये कंगन खोटा था, खरा नहीं था। जिसे वो खरा समझ रही है, सच्चा समझ रही है, और उसे वो सेठ जानता है कि सच्चाई ये नहीं है, उसकी सच्चाई ये है। वो सच्चाई को जानता है और जानते हुए, समझते हुए जो वो अभिनय कर रहा है, ये मेरा अभिनयात्मक रूप है, मैं केवल पत्नी के समक्ष उसकी प्रसन्नता के लिए मैं अभिनय कर रहा हूं। तो जगत में रहता हुआ ज्ञानी व्यक्ति संसार की सच्चाई को जानता है और सच्चाई को जानते हुए भी ये भी जानता है कि मैं संसार में आया हूं तो और इस शरीर को लेकर के मुझे अभिनय करना है। जहां जो अभिनय करने के लिए भगवान ने मुझे दिया है उसमें मुझे 100% खरा अभिनय करना है, वहां झूठ अभिनय ही करना है। तो उसे इतना अच्छी तरह से करो, इतनी अच्छी तरह से करो कि अभिनय करने के लिए जो आपको दिया गया है उसमें इतनी जीवंतता आप प्रकट करो कि जिसे देख करके, ये अभिनय के लिए जिसने आपको भेजा है ना, वो कारण ब्रह्म परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर आपसे जब पारितोषिक मांग देने लगे तो उस समय इतने प्रसन्न होकर वो पारितोषिक आपको दे कि जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आपको इनाम मिले। इसीलिए किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा, अब मैं बहुत नाचू गोपाल, गोपाल में इतना नाचा हूं, 84 लाख योनियों में तूने नचाया, मैं हर योनि में नाचा, जैसा तूने नचाया वैसा मैं नाचा, नाचते 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 मैं इतना थक चुका हूं कि अब मैं बहुत नाचू गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल मैं बहुत नाचा, अब नाचते नाचते थक गया हूं, यदि मुझे मेरा किया हुआ नाच आपको भा गया हो, प्रसन्न हो गया, मन को भा गया हो, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे तब यही पारितोषिक दें, इनाम दें कि जो मैं आपसे चाहूं, मेरी चाह क्या है, मुझे आप मिले। भक्त की तो एक ही चाह होती है ना कि मुझे केवल मेरा परमात्मा मिले, मैं मेरी जो चाह है शाश्वत चाह कि वो आप मुझे प्राप्त हो। यदि मेरा नाच आपको पसंद नहीं आया, मेरी इस अभिनय में कोई त्रुटियां रह गई, नाचना नहीं आया, तो आप मुझे कह दीजिए कि जा तुझे नाचना नहीं आया, जब नाचना ही नहीं आया तो तब फिर दोबारा मुझे आप नाचने के लिए भेजते क्यों है, मेरा मोक्ष कर दीजिए। जब भगवान नाचने के लिए नहीं भेजेंगे दोबारा तो होगा क्या, जा तुझे नाचना नहीं आता, बोले इस नाचंद से मेरा छुटकारा कर दीजिए, पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम, जो ये चक्र है इससे छुटकारा करके मुझे मुक्त कर दीजिए, आवागमन के चक्कर से मुक्त कर दीजिए, मेरे तो दोनों में जीत है, मेरी तो दोनों में जीत है, परंतु नाचना तो पड़ेगा नारायण, पर इतना बढ़िया नाचो, इतना बढ़िया अभिनय करो, अभिनय करना ही है तो फिर उसमें कंजूसी क्यों, फिर उसमें कमी क्यों, पर ये आपका एक अभिनय है, जहां जो रूप का आपको मिला है। देखो यूं तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सिनेमा बनाने वाला डायरेक्टर अलग होता है, उसका निर्देशक अलग होता है, पटकथा लिखने वाला अलग होता है, और एक्टिंग करने वाला अलग होता है, नायक अलग होता है, खलनायक अलग होते हैं, वहां तो बहुत सारे होते हैं, पर यहां तो सब कुछ एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। इसलिए जो उसने दिया है आपको, जो आपको से कर रहा है, तो उसको करवाते हुए आप सबको ये अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ये उपनिषद हमें यही कहती है, व्यष्टि और समष्टि के को समझ करके हमें सद असत का विचार करो, देह के साथ मत इतने उपेक्षा करो, शरीर में इतनी आसक्ति नहीं हो, और उसको विचार पूर्वक हम चलें सत असत के विचार से, मन से अंतःकरण को शुद्ध करके अमृतत्व की प्राप्ति करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज के ही ब्राह्मण सेशन।